आप गांधी से मिल सकते हैं यहाँ। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, आने वाली पीढ़ियों को यकीन नहीं होगा कि इस धरती पर गांधी जैसा हार्ड मास का कोई पुतला भी रहा करता था। लेकिन इसी धरती पर कई और ऐसे लोग हुए जिन्होंने अपने काम से गांधी की याद ताज़ा कर दी। गांधी अगर जिंदा होते तो ये लोग उनके साथ चलना पसंद करते। गांधी के इन सहचरों के बारे में बता रहे हैं उदयन वाजपेयी। इस समय दुनिया में भारत के बाहर जितना गांधी को समझने का प्रयास हो रहा है उतना भारत में नहीं। शायद हम कुछ थोड़े थके हारे लोग हैं, शायद हमारी सभ्यता थक हार गई है। हमारे शासन तंत्र को किसी तरह चलाने के लिए कोड़े मारे जा रहे हैं, पर वो तब भी चल नहीं पा रहा। शायद इसलिए क्योंकि उसको समझा नहीं गया, ना ही उस समाज को जिसे शासित करने की कोशिश हो रही है। इस सब के कारण भी गांधी की हमारी समझ बहुत सीमित है। हमारे यहाँ गांधी के अगर बहुत प्रशंसक हैं तो उनके निंदकों की संख्या भी कम नहीं। महान चिंतकों के साथ ऐसा होता है। अगर आपसे सब लोग सहमत हैं, अगर आप सब लोगों को सहमत मानते हैं या उन्हें ऐसा करना चाहते हैं, आप सब होंगे, चिंतक नहीं हो सकते। यहाँ हमने सहचर शब्द जानबूझकर रखा क्योंकि जिनके बारे में आगे बातें की गई हैं वे गांधी के अनुयायी नहीं हैं। लेकिन अगर गांधी होते तो ये लोग उनके सहचर होते, यानी उनके साथ चलना पसंद करते। गांधी के इन सहचरों ने अहिंसा, सविनय अवज्ञा और सत्याग्रह जैसे मूल्यों का अपने आंदोलन और विचारों में नया विस्तार किया। दुनिया में ऐसी कोई मनुष्य केंद्रित सभ्यता नहीं है, ना हो सकती है, जहां पर्यावरण का संकट ना हो। इस संकट को हम गांधी के संदर्भ में समझ सकते हैं और यहीं से उनके सहचरों की चर्चा शुरू करते हैं। गंगा जैसे निर्मल थे अग्रवाल। गांधी के पहले सहचर हैं डॉक्टर G.D. अग्रवाल। उनका जिक्र 2017 और 2018 तक सोशल मीडिया में बहुत हुआ करता था, अब कम हो गया है। वे कानपुर IIT में प्रोफेसर थे। उनके छात्रों से मैं मिला हूँ। उनका कहना था कि पर्यावरण विज्ञान पढ़ाने वाला ऐसा शिक्षक दुनिया में नहीं था। डॉक्टर अग्रवाल का एक नाम स्वरूप सानंद भी था। सानंद यानी आनंद में रहने, आनंद के साथ होने वाला। उनका ये कहना रहा है कि गंगा विशिष्ट नदी है। उसका पानी बैक्टीरियोसाइडल है, जिसका आशय ये है कि उस पानी में जीवाणुओं को मारने की शक्ति है। डॉक्टर G.D. अग्रवाल का कहना था कि गंगा का सरकारीकरण हो गया है। इसके अर्थ से हम सब वाकिफ हैं। गंगा के लिए डॉक्टर अग्रवाल ने एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक तथ्य सामने रखा है। अगर गंगा का पानी अविरल नहीं बहेगा तो गंगा नष्ट हो जाएगी। हमारे बड़े इतिहासकार रामचंद्र गुहा, जिन्होंने पर्यावरण पर विशेष रूप से लिखा है, कहते हैं, आर इज अ कंट्री वेयर वी हैव किल्ड आर रिवर्स, यानी हम ऐसे देश हैं जहां हमने अपनी नदियों को मार डाला है। हमारे नदियों का गला घोंटने का एक रास्ता ये भी है कि हम उन पर बांध बनाते जा रहे हैं। डॉक्टर अग्रवाल की बुनियादी बात ये है कि अगर नदी का बहाव अविरल नहीं होगा तो इसकी पवित्रता का आधार चला जाएगा। गंगा के पानी की पवित्रता, या जैसा कि लोक व्यवहार में प्रचलित है कि उसके पाप धोने का आधार उसका जीवाणुओं को मारने का गुण, नदी के अविरल न बहने से हट जाएगा। हमारी तमाम सरकारों का गंगा के प्रति रवैया न वैज्ञानिक था और न पौराणिक। वो नैतिक भी नहीं था, वो केवल उपयोगितावादी था। वे भूल गए कि ये नदी करोड़ों लोगों को जीवन देती है, करोड़ों लोगों की कल्पना में वास करती है, सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में बिखरे अन्यान्य लोगों की। अग्रवाल गंगा के लिए जिस निर्मलता की बात कर रहे थे वो स्वयं वैसे थे। मैंने ऐसे निर्मल व्यक्ति जीवन में बहुत कम देखे जिन्हें देखने से ही आपको लगे कि मैं इस आदमी के पांव में कितने गहरे तक गिर जाऊं। उन्होंने तमाम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर परियोजनाओं पर सवाल उठाए, कहा कि इससे पूरी नदी गायब हो जाएगी, भारतीय सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्रोत समाप्त हो जाएगा, उसका निर्मल प्रवाह इस सभ्यता को बचाने का उपक्रम जैसा है। यहाँ ये याद रखना होगा कि नदी के निर्मल प्रवाह और उसे केवल स्वच्छ रखने में अंतर है। इसी निर्मलता के लिए उन्होंने 4 बड़े उपवास किए थे। चौथा उपवास देर तक करते रहने के बाद उनकी मृत्यु हो गई और भारत की राजसत्ता ने इसके बाद भी उनकी समझ और उससे उत्पन्न मांग पर ध्यान नहीं दिया। ये सारा आंदोलन गांधी से प्रेरणा लेकर किया गया था। अपने सुदीर्घ उपवासों के दौरान G.D. अग्रवाल ने एक बार भी किसी के लिए अपशब्द नहीं कहे, सिर्फ अपने उपवासों की सूचना लोगों तक पहुंचाई। तब भी उनके साथ ज्यादती हुई, हम यहाँ उसकी तह में नहीं जाएंगे। चंडी प्रसाद का चिपको आंदोलन। गांधी के दूसरे सहचर हैं चंडी प्रसाद भट्ट। उन्होंने पूरा चिपको आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन के अनुरूप किया है। वो असहयोग का आंदोलन है और अहिंसक है। चिपको के आंदोलनकारियों ने एक स्थान पर भी हिंसा नहीं की। इनके साथ बेहद अनाचार हुआ, धोखा हुआ, पर इन्होंने अपनी राह नहीं छोड़ी। उत्तराखंड के गोपेश्वर जिले के छोटे से ब्लॉक दसौली ग्राम में इन्होंने दसौली स्वराज संघ बनाया था। चंडी प्रसाद जी 60 के दशक से काम कर रहे हैं। इनके काम का बुनियादी आधार ये है कि वन को वनवासियों या वन के पास रहने वालों का होना चाहिए। ये लोग वन से अगर कुछ लेते हैं तो वन को कुछ देते भी हैं। ये लोग सिर्फ वन का एक तरफा उपयोग नहीं करते। इसी बुनियाद पर ही आंदोलन खड़ा हुआ। हम याद करें कि अंग्रेजों ने 1821 में एक कानून निकाला था कि वनवासियों को वन में प्रवेश का अधिकार नहीं है। ये कानून बढ़घट के अभी तक चला आ रहा है। वनवासियों के लिए वन उपलब्ध नहीं है। ये ख्याल रखना होगा कि भारत में कभी भी जमीन का आधिपत्य या उसका मालिकाना हक शासन के पास नहीं होता था। उन पर ग्रामीण समाज का अधिकार होता था। उन पर कुछ भी करने का अधिकार समुदाय को होता था, शासन को नहीं। इसलिए जब से ये बात आई कि वनवासी और वन के नजदीक रहने वाले वन के अंदर नहीं जा सकते, ये नियम इन लोगों के लिए बहुत बड़ा झटका रहा होगा। ये झटका लगता ही चला गया है। इसका छोटा सा इतिहास ये है कि उत्तराखंड में जब अंग्रेजों ने वनवासियों आदि को वन से बेदखल कर दिया, फिर एक अंग्रेज विल्सन साहब उस क्षेत्र में आए। उन्होंने शासन से वहां शिकार करने की अनुमति ली थी। थोड़े दिन तक वो शिकार से संतुष्ट रहे, फिर उनको लगा कि यहाँ इतने बड़े पेड़ हैं, इन्हें काट लेना चाहिए। फिर उनके समर्थन से बड़े स्तर पर पेड़ काटे जाने लगे। तब तक हिंदुस्तान में रेलगाड़ी आ गई थी। विल्सन साहब ने सोचा कि इसमें स्लीपर्स बनाने के लिए लकड़ी की आवश्यकता होगी। वो लकड़ी इस इलाके से ली जा सकती है और वहां पेड़ों की कटाई होने लगी। इस तरह उत्तराखंड के इन वनों को नष्ट करने का व्यापक अभियान चलने लगा। ये तथ्य किसी से छिपा नहीं होना चाहिए कि उत्तराखंड के वन पूरे देश के स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य हैं। ये सिर्फ उत्तराखंड का सवाल नहीं है। गांधी की सहयोगी मीराबेन ने इस पर बहुत ही सुंदर कहा है। प्रकृति ने हिमालय के ऊपरी हिस्से में जो बांज के पेड़ उगाए हैं, वे ही सारी जमीन को पकड़े हुए हैं। अगर वो पकड़ छूट गई, जमीन खिसकेगी, नदियां उथली होंगी, उनके पानी में उभार आएगा और उनमें बाढ़ आने लगेगी। इनके उथले होने से पानी के गुण और मात्रा पर गहरा असर पड़ेगा। इसलिए इन पेड़ों को बचाए रखना जरूरी है। ये पेड़ धीरे धीरे हम लोगों ने स्वतंत्र होने के बाद और भी काटे हैं। इसके कारण इन पहाड़ों में व्यापक भूस्खलन हुआ। चंडी प्रसाद जी की संस्था ने बहुत से काम किए। सबसे पहले तो ये कहा कि हमारी संस्था वनवासियों या उत्तराखंड वासियों को उनकी ही जगह पर ऐसा काम देगी कि वे सम्मान पूर्वक अपना काम कर सकें। वरना होता क्या है कि उत्तराखंड से लोग भागते फिरते हैं। चंडी प्रसाद जी ने अपनी संस्था में ऐसे काम किए जिससे दसौली और उसके निकट के इलाकों के लोगों को कुछ रोजगार मिल सके। बड़ी संख्या में इन्होंने रोजगार दिया और फिर एक दिन उस क्षेत्र के अंगू पेड़ों, जिनकी हल्की और मजबूत लकड़ियों से औजार और खेल के सामान बनते हैं, को सरकार ने एक खेलों का सामान बेचने वाली कंपनी को बेच दिया। संयोग से उस कंपनी का नाम साइमन था। साइमन साहब इलाहाबाद के थे। सरकार ने उनसे कहा कि इन पेड़ों को काट ले जाओ। पहली बार चंडी प्रसाद जी ने इस पेड़ कटाई को रोकने के लिए एक शब्द निकाला, बड़ा ही अच्छा शब्द, अंग बाल्ठा, यानी किसी चीज से आप चिपक जाएं, उसे आलिंगन में ले लें। यहां से चिपको आंदोलन शुरू हुआ। उसमें सरकार से कहा गया कि आप पेड़ जरूर काटिए, पर उसके पहले आप हमें काटिए, हमारी पीठ पर कुल्हाड़ी चलाइए और फिर ये पेड़ काट लीजिए। ये आंदोलन इस छोटे से शब्द से शुरू हुआ। जब ये तय हो गया कि सरकार ने ठेकेदार को अधिकार दे दिए हैं, वो आएगा और पेड़ काटेगा। दसौली संघ ने सोचा कि ये पेड़ इस देश के हैं, इन पर सिर्फ सरकार का मालिकाना हक नहीं है। इस आंदोलन के दौरान उन्होंने अपने लिए भी जो पेड़ मिलते थे वे लेना बंद कर दिए। उन्होंने वे पेड़ वहां छोड़ दिए। एक और अधिकारियों ने उनको तरह तरह से गफलत में लाकर कहीं लोगों को वहां इकट्ठा कर एक नकली सी बैठक की। दूसरी ओर उन्हीं अधिकारियों की जानकारी में ठेकेदार के मजदूर पेड़ काटने के लिए भागते चले गए। वे लोग इन सब धोखों से गुजरे। वह रे हमारा लोकतंत्र। यहाँ तंत्र पूरे समय लोग को छलने में लगा रहता है। एक अच्छा इत्तेफाक ये हुआ कि वन के अरण्यपाल ने चंडी प्रसाद जी से कहा कि दसौली आकर हम आपका दफ्तर देखना चाहते हैं, आप जिला मुख्यालय आ जाइए, हम यहाँ से आपके साथ बैठक पर चलेंगे। उसी दौरान ठेकेदार के लोग वहाँ पेड़ काटने चले गए, लेकिन तब तक उस क्षेत्र की स्त्रियों को पता चल गया था कि पेड़ नहीं काटने देना है। चिपको आंदोलन का एक महत्वपूर्ण भाग स्त्रियों का संगठन महिला मंगल संघ था, जिसमें गौरा देवी प्रमुख थीं। वो और उनके साथी जाकर पेड़ों से चिपक गईं। ठेकेदार के मजदूर एक भी पेड़ नहीं काट सके। यही नहीं, इस सब छल प्रपंच के बाद भी एक सच्चे गांधी सहचर की तरह चंडी प्रसाद जी ने बाकायदा सरकार से ये आग्रह किया कि आप ये वैज्ञानिक जांच कराइए कि जोशीमठ के नीचे की जमीन पर, जिस पर 2543 पेड़ हैं, उनके काटने पर क्या भूस्खलन होगा। अगर आपके वैज्ञानिक कहते हैं कि नहीं होगा, तो आप अवश्य काटिए। सरकार ने दिल्ली विश्वविद्यालय के वनस्पति शास्त्र के आचार्य डॉक्टर वीरेंद्र कुमार की अध्यक्षता में एक समिति बनाई। उस समिति ने कहा कि चंडी प्रसाद जी का कहना ठीक है, पेड़ों को काटना बंद करना होगा। ग्राम स्वराज संघ ने यही नहीं किया, उन्होंने इस इलाके में हजारों की संख्या में पेड़ लगाए। अलखनंदा नदी के ऊपर के इलाके में और उसके नीचे के इलाके में पेड़ लगाए। एक बार 9,000, फिर 8,000। वे आज भी जीवित हैं और उनके कारण हिमालय, जो कमजोर और नया पहाड़ है, अभी भी हिमालय बना हुआ है। इस बड़े स्तर पर चंडी प्रसाद भट्ट और उनके साथियों ने समूचे देश की खातिर हिमालय की रक्षा की। अनुपम मिश्र बने कईयों की प्रेरणा। तीसरे सहचर अनुपम मिश्र हैं। एक तो अनुपम मिश्र का बड़ा योगदान ये है कि वो चंडी प्रसाद भट्ट जी जैसे लोगों को प्रकाश में लाए। जब चंडी प्रसाद जी का चिपको आंदोलन चल रहा था, जिससे सुंदरलाल बहुगुणा भी बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने भी टिहरी में वही अभियान चलाया, अनुपम मिश्र दसौली गए, उनके साथ रहकर उस आंदोलन को समझा और उसके दार्शनिक आयामों को समझकर चिपको आंदोलन पर किताब लिखी। राजस्थान की स्थानीय टेक्नोलॉजी के आधार पर पानी के संरक्षण के लिए कुएं, तालाब, नदियों को जीवंत रखने की परंपरा का अनुपम ने अध्ययन किया और उस पर किताबें लिखीं। यहाँ जितने भी सहचरों का नाम आ रहा है, वे सामान्य अर्थों में एक्टिविस्ट नहीं हैं या थे, वे अपने समाज के जागरूक सदस्य हैं। ये सभी लोग अपने को एक्टिविस्ट कहलाना पसंद नहीं करते, पर यदि हमारा उन्हें यही कहने पर जोर है, तो पहले एक्टिविस्टों को कुछ निकट से देखना चाहिए। वे दो किस्म के हुआ करते हैं। एक ये मानकर चलता है कि आज जो समाज है या जिन लोगों से आप संबोधित हैं, उसको कुछ नहीं पता, हमें ही सिखाना है, और दूसरे ये मानकर चलते हैं कि समाज को रास्ते मालूम हैं, उसे सिर्फ स्मरण कराना है, उसकी सामूहिक कल्पना को जागृत करना है। गांधी के सहचर स्मरण करता है। गांधी ने भी कभी खुद को एक्टिविस्ट नहीं कहा, उन्होंने हमेशा यही कहा कि मैं किसी भी सामान्य भारतीय की तरह हूँ। अगर आप किसी दूसरे सामान्य भारतीय से मिलें, वो जिस तरह से चीज़ें करता है, मैं वैसे ही करता हूँ। उन्होंने सिर्फ लोगों की याददाश्त पर पड़ी धूल या आवरण को हटाया। कल्पनाशीलता के बगैर स्मृति जागृत नहीं होती। गांधी ने वही किया, उनके सहचरों ने भी। इनके किसी काम में कोई हिंसा नहीं और इनके आंदोलनों से लोग अपने आप जुड़े। अनुपम मिश्र भी अपने को एक्टिविस्ट नहीं मानते थे। वे कहते थे कि अगर आप स्वयंसेवी संस्था आदि बनाकर किसी जगह जाते हैं, तो ऐसा करते हैं मानो अपने पांवों पर चलने वाले आदमी को बैसाखी दे रहे हों। इससे धीरे धीरे वो अपने पांव से चलना बंद कर देता है। अनुपम 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत के बड़े पर्यावरण बौद्धिक हैं। उनकी प्रेरणा से फरहत कॉन्ट्रैक्टर नामक शख्स ने राजस्थान में जल संरक्षण दोबारा शुरू कर दिया है। असल में सरकारी नियमों के चलते कैसी भी पारंपरिक तकनीक से पानी का संरक्षण नहीं हो सकता, क्योंकि इससे प्रशासकों, सत्ताधारियों आदि का हित नहीं सकता। ऊपर से इन पद्धतियों के अपेक्षाकृत स्थायी होने और समाज द्वारा चलाने के कारण राजनेताओं की समाज में आवश्यकता कम हो जाती है। पारंपरिक ढंग से पानी के संरक्षण का काम पारंपरिक प्रभावशाली युक्तियों से करने का प्रयास फरहत ने किया और बहुत सफलतापूर्वक किया। ये काम उन्होंने कोई स्वयंसेवी संस्था बनाकर नहीं किया, उन्होंने समाज के लोगों को शामिल किया और व्यापक स्तर पर उसी समाज के लिए पानी का संरक्षण किया। इस काम में ग्रामीण समाज शामिल हुआ है और इस रास्ते पुनर्जीवित किए गए कुओं, तालाबों आदि को बनाए रखने का अटूट सिलसिला उन गांवों में बन गया है। यही फरहत मोरक्को गए। असल में अनुपम मिश्र की जल संरक्षण पर लिखी किताब का फ्रांसीसी अनुवाद हो गया था। मोरक्को फ्रांसीसियों से बहुत निकट है, उनकी एक भाषा फ्रांसीसी भी है। वहां के शेख के किसी सलाहकार ने अनुपम की फ्रांसीसी में अनुदित किताब आज भी खरे हैं तालाब पढ़ी। उन्होंने अनुपम को मोरक्को आने का न्योता दिया। अनुपम ने स्वयं न जाकर फरहत को वहां भेजा। वो वहां गए और शेख साहब से कहा कि मैं आपका काम करने के लिए तैयार हूं, आपके रेगिस्तान में पानी का संरक्षण कर दूंगा, पर दो शर्तें हैं। एक तो ये कि आप इसका मुझे पारिश्रमिक, जिसको आजकल कंसल्टेंसी फी कहते हैं, नहीं देंगे, और दूसरा ये समझ लें कि ये काम सरकारी महकमों से नहीं होगा, स्थानीय लोगों को शामिल करके ही होगा, फिर जितना भी समय लगता है लगे। ये हमारे लिए बड़ी शुभ सूचना है और साथ ही गर्व की बात है कि उन्होंने ये काम वहां कर दिया और कर रहे हैं। ऐसे फरहत को उत्प्रेरित करने का काम अनुपम मिश्र का है, जो स्वयं गांधी से प्रेरित हैं। लापोड़िया गांव में कभी पानी की कमी नहीं होती। अनुपम के काम का दूसरा उल्लेखनीय पड़ाव लापोड़िया गांव है। राजस्थान में स्थित इस गांव में बहुत कम बारिश होती है। वहां के कुछ लोगों ने अनुपम के काम से प्रेरणा लेकर अपने गांव में जल की व्यवस्था की। उन्होंने पूरे गांव में जल की ऐसी व्यवस्था की कि जब वहां सूखा भी पड़ता है तो गांव वालों को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। राजस्थान में चार चार पांच पांच साल तक सूखा पड़ा, संभवतः 1992 से 1996 तक। तब भी लापोड़िया का कोई आदमी बाहर नहीं गया, लापोड़िया के लोग लापोड़िया में ही रहे। अनुपम वहां जाते थे। उन्होंने इन सारे आंदोलनों में स्वयं भाग लिया और वहां के जल संरक्षण पर किताब लिखी। ये नहीं कि दूर बैठकर एक पत्रकार की तरह ये सब लिखा हो, वहां गए, उन लोगों के साथ काम किया, फिर लिखा। हमारे गांधी के अंतिम सहचर नॉर्वे के अरने नैश हैं। इन्होंने भी एक नदी को निर्मल रखने और उसके बहाव को बचाने के लिए एक बड़ा आंदोलन किया था। ये बहुत बड़े दार्शनिक भी हैं। इन्होंने अपने अध्ययन के दौरान महात्मा गांधी पर शोध प्रबंध लिखा था, महात्मा गांधी और शोपेनहावर। गांधी से बहुत गहरे रूप में प्रभावित होकर अरने नैश ने एक शब्द दिया और कहा कि हमें डीप इकोलॉजी का व्यवहार करना होगा, हम गहन पर्यावरण मैत्री अपने व्यवहार में लाएं। डीप इकोलॉजी शब्द से पूरा पश्चिम प्रभावित है। अरने नैश ने बहुत सारे काम इस रास्ते किए हैं, वो स्वयं इसी डीप इकोलॉजी का व्यवहार करते हैं। अरने नैश आजकल पहाड़ पर रहते हैं, 80-82 वर्ष के हैं, अकेले रहते हैं। वहां उनकी कुटी सी है जिसमें उनकी जरूरत की चीजें हैं, एक खिड़की है। वहां रहते हुए उन्होंने 15 पुस्तकें दर्शन और पर्यावरण को लेकर लिखी हैं। अरने नैश ने कहा है कि मनुष्य केंद्रित सामाजिक व्यवस्था अपने पर्यावरण को नहीं बचा सकती, हमें बायोस्फेरिक ह्यूमैनिटी यानी जीव केंद्रित मनुष्य समाज बनाना होगा। हमें अपने को जगत के साथ जोड़कर समझना पड़ेगा, मनुष्य केंद्रियता छोड़नी होगी। उन्होंने दूसरी बड़ी बात ये कही कि हम जब तक अपने को बहुत छोटा नहीं मानेंगे, तब तक हम अस्तित्व मात्र के विराट से जुड़ नहीं पाएंगे।